आइए देखते हैं कि अशरय मुबशरा में से सबसे पहली शख्सियत, मैं कह सकती हूँ कि मैं खुशी में रात को अपने आप से कह रही थी कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी उम्मतियों में से अबू बकर सिद्दीक, कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरा वक्त नहीं गुजरा था कि कब वो वक्त आए और मैं आपके साथ इनके बारे में शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह हमारी आज की पर्सनैलिटी अबू बकर सिद्दीक हैं। तो आज इस 1 घंटे के तकरीबन सेशन में मालूमात ज़्यादा नहीं दूंगी, आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएंगी। एक होता है इनकी मालूमात पे रे, मैं आप दोनों ही बता दें, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये वजह चाहिए कि आखिर क्यों ये अशरय मुबशरा क्यों है, इनको जन्नत की खुशखबरियाँ क्यों मिल गईं और हमें क्यों नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हमसे इस मौजू का हक अदा करवाए। आइए शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातें नोट कीजिए और दिल पे लेके हर बात जब अबू बकर सिद्दीक की सुने उस वक्त फिर अपने आप को पुकारें खामोशी से। और ये जो इल्म की महफिल में हम खुद से बातें करते हैं ना, ये हमसे बहुत बड़े बड़े फैसले कराता है। मैं कह सकती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले आपकी जगह पे बैठ के किए हैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे आज भी वो दिन वक्त याद आते हैं। मेरे वहम गुमान में भी ये सब नहीं था, लेकिन मेरी नज़र इससे भी ऊपर थी। जो भी अभी तक अल्लाह ताला ने दीन के साथ ताल्लुक़ दिया और अच्छे साथी दिए, तो अल्लाह पे नज़रें लगाना मैंने आज स्टूडेंट बनने में सीख लिया था। अगर तब ना सीखा होता ना, तो इस वक्त शायद मेरी नज़रें कहीं और होती। तो लोगों के सहर से निकलकर अल्लाह को बड़ा मानना, यही है तौहीद। और यही चीज़ एक शख्स जिसका नाम अबू बकर था, उनको सिद्दीक कहलवाती है। आइए शुरू करते हैं। नखमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। अशरय मुबशरा में सबसे पहली शख्सियत जिनका नाम ज़ुबाने नबूवत से लोगों ने सुना, वो थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो। एक जुमला लिख लें, इस्लाम को सही समझे ही सहाबा कराम थे। ये जो शख्सियात पैदा हुई ना, वो कोई अजूबे नहीं थे, कोई वो डमी चीज़ें नहीं थी, गोश्त पोस्त के इंसान थे। लेकिन बस वो शख्सियत जो वाकई अकीदे तौहीद को समझ कर सामने आती है ना, वो थे असहाबे रसूल। उन्होंने इस्लाम को समझ लिया, और वल्ला ही आज भी यही होगा। आज भी जो इस्लाम को समझ जाता है ना, फिर उसको कोई परवाह नहीं रहती। कोई खुश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। कोई नाराज़, चलिए अल्लाह आपको हमसे राज़ी कर दे। अभी तो पढ़ के आए रब के बारे में, खुश करने वाला, नाराज़ करने वाला, देने वाला, छीनने वाला। अब ये जो आज आपको 22 पॉइंट्स लिखाए ना मैंने रब के, ये आपके अमल में झलकेंगे, झलकने भी चाहिए। आज घर जाकर यही सोचना है अपने कि मैं फिर क्यों डरती हूँ। अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह हंसवाता है, अल्लाह बंदे के आंसू पोंछता है। तो ये गैर महसूस तरीके से फिर आपकी डोरियाँ अल्लाह ताला से जुड़ेंगी। हमने वो सारी चीज़ें जो युमेनूना बिलगैब का हिस्सा थी ना, रब नज़र जो नहीं आता तो वो लोगों में ढूंढनी शुरू कर दी और हम भटक गए। यही हुआ, शिर्क यही होता है। इंशाल्लाह कल हम बहुत कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में कि नज़रें अल्लाह से हटकर दुनिया में लगती हैं। ये वही है कि जैसे खाना ना मिले तो हम चंक खाते रहते हैं ना, बेकार चीज़ें। जब हमें सच्चा रब नहीं नज़र आता और उस पर हमारी नज़रें नहीं होती ना, तो फिर हम बेकार चीज़ों को रब बनाते हैं। हकीकत यह है कि नबुव्वत के बाद सबसे ऊंचा मुकाम मुकामे सिद्दीकियत है। हम हर रोज़ सूरत फातिहा में पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनका रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किए। इसका जवाब हमें सूरत निसा की आयत में मिलता है, वमन युतिल्लाह व रसूल, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, मिन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा। नबीयीन के बाद का जो लफ्ज़ है वो सिद्दीकीन है। उम्मतियों में सबसे ऊंचा मुकाम अगर किसी को मिल सकता है तो वो मुकामे सिद्दीकियत है। और आज आप पर मैं उसी शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो। ये इनका नाम नहीं था। अबू बकर सिद्दीक का असल नाम जिसको आप कहते हैं कि रखा जाता है, वो अब्दुल काबा था। अतीक के नाम से मशहूर हुए क्योंकि इनके नसब में कोई ऐब नहीं था। अतीक कहते आज़ाद। उस दौर में इंसानियत इतनी पामाल हो चुकी थी कि पैदा होते बच्चे को उसका नसब नहीं पता होता था। कई मर्दों के ताल्लुकात के बाद तो एक औरत बच्चे को जन्म देती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके नसब को महफूज रखा। जब मुसलमान हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। आतीकुम मिनन नार का लकब अता फरमाया। कुन्नियत आपकी अबू बकर थी। और इनके बारे में कुरान में एक आयत नाजिल है, अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बिही, वो शख्स जो सच के साथ आया और उसने उसकी तस्दीक की। 24वें पारे के पहले रुकू की आयत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके वालिद का नाम उस्मान था, कुन्नियत अबू कुहाफ़ा थी और कुन्नियत से ही मशहूर हुए। आपकी वालदा का नाम सलमा और कुन्नियत उम्मुल खैर थी। सलमा अबी कुहाफ़ा के चचा सखर बिन आमिर की बेटी थी, यानी माँ बाप जो थे पीछे से रिश्तेदार भी थे। नसब भी है इनका जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अबू बकर कौन थे? थोड़ा सा इस्लाम से पहले का उनका मनसब देखिएगा, ताकि आपको मुझे भी अपने बारे में फ़ैसला करना आए कि कहाँ से लोग निकले। कोई ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ कर आया और उसको भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया, और कोई मनसब और सरदारियत के ओहदे से उठकर आया उसको भी सीने से लगाया। अबू बकर सिद्दीक को मक्का का सरदार कहा जाता था, सरदाराने मक्का में शुमार था। दियत और अज़म के फैसले आपके सपुर्द थे, यानी जब किसी की दियत, जिसको इंग्लिश में ब्लड मनी कहते हैं, लेनी देनी होती, तो इसका फैसला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो करते थे। बहुत पसंदीदा शख्सियत थे। और याद रखिए, जो देने वाले होते हैं ना, सखी दिल, वो हमेशा ही पसंदीदा होते हैं। कबूल इस्लाम बेसत के पहले ही दिन कर लिया। जब अल्लाह के नबी सल्लम पर वही उतरी और आप उनके पास गए, तो अबू बकर सिद्दीक ने फौरन इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी का इनके बारे में ये खिराज तहसीन भी किताबों में मौजूद है कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ा सा तो सब सोचा। हम भी तो सोचते हैं ना, बहुत ही सोचते हैं, सिवाय अबू बकर के। आपने बिल्कुल नहीं सोचा और फौरन उसको ले गए। ये हैं साबिकुम बिल खैरात। आपको खूबियाँ भी समझ आने लगेंगी। हक पेश किया जाए तो पीछे ना हटे, हक मांगा जाए तो देने में जल्दी करें। आपकी नबुवत को मानने वाले, बिला तामुल तस्दीक करने वाले। और अबू बकर सिद्दीक कब बने? जब वाकये मेराज के बाद अबू जहल ने ये बात पेश की कि ये मुमकिन है भला कि एक शख्स रातों रात यहाँ से जाए और बैतुल मक़दस भी जाए और फिर सातवें आसमान से वापस आए। चूँकि अबू बकर सिद्दीक उस वक़्त तक नबी सल्लम को नहीं मिले हुए थे, तो कहा कि मुमकिन तो नहीं है वैसे। कहा, देखा तेरा दोस्त कहता है। अच्छा, वो कहते हैं, फिर मुमकिन है। उस मौके पे फिर इनको सिद्दीक का लकब मिला था। उमर में नबी सल्लम से 2 साल 2 महीने छोटे थे। मक्का में परवरिश पाई, तिजारत की गरज से बाहर सफ़र किया करते थे। और ये वो शख्स हैं कि जो अल्लाह के नबी के साथ Day 1 से लेकर, ना सिर्फ ये कि आखिरी दिन तक रहे, आज भी दोनों की आखिरी आरामगाह जिसको लोग कहते हैं, जिसको हम कब्र कहते हैं, वो एक साथ है। और बास लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सफ़रे मेराज में आप जा नहीं सकते थे क्योंकि आप उस मनसब पे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने वहाँ आसमानों पे एक फरिश्ते की शक्ल अबू बकर जैसी बना दी, जिसको देखकर अल्लाह के नबी को लगा कि अबू बकर हैं, लेकिन वो फरिश्ता था, ताकि आपको यहाँ अबू बकर की कमी महसूस ना हो। यही है आपके रफीके सफ़र हिजरत के मौके पे। और ये है वो शख्स के जिसने इस्लाम की डूबती हुई नैया को संभाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के वाक़े के बाद। हकीकत यह है कि अबू बकर सिद्दीक की तारीफ़ करें तो वो लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। क्या खूबियाँ थी? नंबर एक, सरदार। मालो दौलत के एतबार से आज की ज़ुबान बिलियनेरियन थे, बामुरव्वत, लोगों पे एहसान करने वाले, मसाइब के वक्त सब्र व इस्तकामत से काम लेने वाले, मेहमानों की खूब खातर मदारत करने वाले, लोगों को मशवरे देने वाले उनके ज़ाती मामलात में, लोग आपको साहिब उर राय कहते थे। साहिब कहते हैं वही है जो लफ्ज़ साहब यसूब मुसीबा निशाने पे लगना। साहिब उर राय वो शख्स होता है जिसकी राय बहुत सही हो। आप जो उसे मशवरा मांगें वो जो कहे आप करें तो आपको ये समझ आ जाए कि वाकई उसने बात सही कही थी। आपकी खूबियों में एक खूबी क्या थी कि नसब लोगों का जानना, और आपका एक बहुत बड़ा इल्म था अनसाब, और अखबार अरब के माहिर थे यानी लोगों के नसब याद रखते थे। तबीयतन फितरतन बुराइयों और गलीज आदतों से पाक थे। जाहिलियत में भी कभी इन्होंने शराब नहीं पी। किसी ने आपसे पूछा कि आपने कभी शराब पी है तो कहा नहीं। क्यों नहीं पी? कहा इसलिए कि मैं सोचता था कि मेरे बदन से बू ना आए और मेरी मुरव्वत ना ख़त्म हो जाए, यानी शराब दोनों काम कर देती है। और ये बात नबी सल्लम के सामने जब हुई तो आपने फरमाया कि अबू बकर ने सच कहा। फिर इसी तरह खैर मुजस्म थे, बेऐब थे, सलीम तबा थे, हक पसंद थे, हक परवर थे। यही वजह है कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, फौरन कबूल किया, ना सिर्फ कबूल किया बल्कि आपकी मदद का वादा भी किया, और सारी जिंदगी इस वादे को इतनी खूबी से पूरा किया कि हर दीन के प्रोजेक्ट में, हर काम में अबू बकर सिद्दीक का माल लगा हुआ है। आप और मैं कह सकते हैं कि अगर अबू बकर जैसे दो चार लोग आज भी आ जाएं तो दीन को किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पे पूरे मक्की दौर का खर्चा रखा हुआ था। पहले आपके पास जो माल था नबूवत के बाद वो हज़रत खदीजा का था, वो तो उन्होंने शादी के बाद से ही आपके हाथ में दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मक्का के 13 सालों में क्या आपकी गुजर बसर थी। कारोबार तो ख़त्म, कपड़े का काम वो तो रुक गया, और इस्लाम पे जो माल लगता था वो किसका लगता था? तो एक जुमला लिख लीजिए, अबू बकर वो हैं जिनका माल इस्लाम की बुनियादों में लगा हुआ है, इसलिए इस्लाम कभी मिटेगा नहीं। जब बुनियादों में इखलास वाला माल लग जाता है ना, जब बुनियादें पत्थर की तरह गढ़ी भी होती हैं ना, तो उस इमारत को कोई गिरा नहीं सकता। दुआ कीजिए कभी भी कोई बुनियाद ऐसी ना हो जिसको कुरान ने मस्जिद दरार कहा, कि खोखली इमारत है और किनारे पे है और एक झटके से गिरने वाली है। अबू बकर सिद्दीक जब दिल से जो अल्लाह के हो गए तो अबू बकर का माल भी अल्लाह का हो गया। और ये जो लफ्ज़ सदका होता है ना, वो भी इसी से ही है। जब तक आप किसी कॉज में सच्चे नहीं होते आप उस पर लगा नहीं सकते। देते सब है, लगाते थोड़ा है। याद रखिए अबू बकर वो शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम को दिया नहीं, इस्लाम पे लगाया। फ़र्क समझ लें आप ही। हम अपने घरों को देते नहीं हैं जब घर खरीदते हैं, लगाते हैं, ऐसे ही है ना। हम अपने बच्चों की शादियों में पैसे देते नहीं, वो तो हम दूसरों की शादियों में जाके देते हैं। हम अपने बच्चों की शादियों पे लगाते हैं। जब हम इस्लाम और इस्लाम के काम को अपना समझते हैं तो सिर्फ देते नहीं हैं, दे के नहीं जान छुटती, वो तो सलामियों में सब नहीं देना होता। कोई रो के दे, हंस के दे, खुशी से दे, मुंह पे कह दे बड़ी खुशी हुई, देना तो पड़ेगा घर जाके ये बोले, ये नहीं होता मामला। सिद्दीक वो होता है जो देता नहीं है, वो लगा देता है। अबू बकर जिस्म के एक एक उज्व से अल्लाह के थे। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन की अमली तस्वीर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। अबू बकर वो सबसे पहले आपके हाथ पर ईमान लाए, सबसे पहला वो शख्स जिसने आपके साथ नमाज पढ़ी। देखिए ये जो साबिकून अलवलून होते हैं ना और अशरा मुबशरा, ये कौन लोग होते हैं? सबसे बड़ी खूबी फौरन समय न बताना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। किसी ने मैमून बिन मेहरान से पूछा आपके नज़दीक हजरत अली ज्यादा अफसल हैं या अबू बकर सिद्दीक? तो उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे मुझे मालूम नहीं था कि इन दोनों में मुवाजना किए जाने के वक्त तक मैं जिंदा रहूंगा। यानी तुम्हें इतनी जरूरत हो गई है कि दो इतने प्यारी शख्सियात में तकाबुल करते हो, कंपैरिजन करते हो? अरे ये दोनों तो इस्लाम के लिए सर की तरह थे, जैसे सर है ना हेड। कैसे? मर्दों में अबू बकर, लड़कों में अली, औरतों में खदीजा, ये सब बराबर थे। डोंट कंपेयर एनीवन। बात समझ गए? और याद रखिए कि इस बात पे सारे स्कॉलर्स का इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी की इजाज़त के बगैर अबू बकर सिद्दीक कभी उठ के नहीं गए, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। हम तो कितनी ही दफा उठते हैं सिर्फ कुरान क्लास में, जिम्मेदारियां इतनी है हमारे कंधों पे। ही कुरान था अबू बकर के सामने भी, यही हदीस थी नबी की, अगर आज नबी आ जाएं तो हमारा आज भी यही मामूल होगा जो हदीस के साथ होता है, और यही होगा जो कुरान के साथ होता है। कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, शुरू के 4-6 दिन हम बहुत चौं चौंचला करेंगे उनका। अबू बकर कभी अल्लाह के नबी को छोड़कर नहीं गए, और ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने आपकी खातिर अपने अहलोयाल को छोड़ा, अल्लाह के नबी और अल्लाह की मोहब्बत में गार में पहुंच गए, लड़ाइयों में आपके साथ, बदर में आपके मुहाफिज खड़े हैं। इतना मुश्किल वक्त था बदर में कि अल्लाह के नबी की जान को खतरा था, क्योंकि लीडर को ख़त्म कर दो तो कॉज ख़त्म होगी। उस वक्त बिग क्वेश्चन था कि नबी सल्लम के साथ अरीश पे कौन खड़ा होगा, और अरीश ऐसी जैसे स्टेज तख्त, ऊपर से कहीं से भी गोली आ सकती है अगर उस दौर में होती। तो अबू बकर ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं नबी का ऐसा दिफा करूंगा किसी को जुर्रत नहीं कि आपकी तरफ मैली निगाह से देखे। और देखने वाले कहते हैं कि अबू बकर के हाथ में नंगी तलवार थी और अल्लाह के नबी के गिर्द यूं घूम रहे थे। अरीश ऊंची जगह आज भी है, मस्जिद अरीश, अगर आपको अगर मौका मिले तो जाके देखें बदर का मैदान। अबू बकर जंगों में आपके सामने खड़े होने वाले, और अबू बकर सिद्दीक वो शख्स हैं जो अल्लाह के नबी को तसल्लियाँ दे रहे थे जब आप दर्द से रो रहे थे और आपके कंधे से चादर गिर रही थी, और आप कह रहे थे कि अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से ये चंद लोग तैयार किए हैं, अगर आज ये ख़त्म हो गए तो तेरा नाम इस ज़मीन पे नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत कोई करे इस ज़मीन पे तो आज इस लश्कर को फतह दे दे। कभी कभी इस्लाम इस तरह भी नौजायद बच्चे की तरह सांस लेता है। कोई तहरीक अगर अपनी इब्तिदा में मर जाए तो पूरी कॉज ही अपनी मौत मर जाती है, जैसे कि बात हुई थी नन्हे पौधे की, बीच निकलेगा जब अपनी सर उठाकर, कोई एक पाँव रखेगा खत्म होगा। दरख्तों पे कोई नहीं पाँव रखता, छोटे छोटे पौधों पे रखते हैं। अबू बकर इस्लाम के बीज से लेकर दरख्त बनने में साथ रहे जी। और गज़वे बदर में अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर और हज़रत अली से कहा था कि तुम में से हर एक के साथ जिब्राइल है और दूसरे के साथ मीकाईल है। तो अबू बकर के साथ जिब्राइल थे। इसी तरह बदर में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो आपके बेटे थे, कौन हो गए? अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे, मुशरिकीन में से आए थे। बेटा कुफर का साथ दे रहा और बाप नबी का दिफा कर रहा। जब वो बेटा मुसलमान हो गया तो कहने लगे कि अब्बा आपको पता है कि बदर के रोज आप कई बार मेरे तीर तलवार की जद में आए थे, यानी मैं आपको मार सकता था पर मैंने अपना हाथ रोक लिया, क्या सोच के कि आप मेरे बाप हैं? अबू बकर बोले, ये जुमला लिख लीजिए बस, ये करने आए हैं आप और मैं, कहानियां तो बड़ी सुनी हुई हमने। कहने लगे, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं तुझे निशाना बनाए बगैर ना छोड़ता। ये है अलहब्बु फिल्ला वल बग़्ज़ु फिल्ला, ये आप पढ़ेंगे अकीदे वाले बाब में आगे जाके। दीन का एक बुनियादी रुख है कि आपकी मोहब्बतें और आपकी नफ़रतें अल्लाह रुखी हो जाएं, प्यार अल्लाह के लिए और नफ़रत अल्लाह के लिए। बहादुर कितने थे? हज़रत अली ने एक मरतबा लोगों से पूछा, तुम्हारे नज़दीक सबसे बहादुर शख्स कौन है, शुजा तरीन? लोगों ने कहा, आप। कहने लगे, नहीं, मैं हमेशा अपने बराबर के जोड़ से लड़ता हूँ, तुम किसी ऐसे शख्स का नाम लो जो इससे भी ज़्यादा हो। कोई ना ले सका। फिर अबू बकर का नाम लिया हज़रत अली ने। कहने लगे कि मैंने देखा कि बदर के मैदान में एक सायबान बना हुआ था जिसके नीचे अल्लाह के नबी थे, और सवाल होता है कि कौन है जो आज आपको मुशरिकों के हमले से रोके? तो उस वक़्त अबू बकर खड़े हुए और आपने कहा कि मैं साथ दूंगा, तो गोया कि अबू बकर शुजा तरीन थे। और एक दफ़ा मक्का मौजमा में जब मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी को पकड़ा, आपको घसीटा और यही कहने लगा कि तू ये क्या काम कर रहा है, तो उस वक़्त जुर्रत सिर्फ अबू बकर को हुई कि वहाँ गए और वही जुमले बोले जो सूरह मोमिन में मर्दे मोमिन के, अतक्तुलूना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि वो अल्लाह को रब कहता है? और अबू बकर आपके ऊपर गिर पड़े, और आपकी बेटी आयशा कहती हैं कि बेहोश होकर जब घर ला दिए गए तो होश में आते ही सबसे पहले पूछा कि नबी सल्लम का क्या हाल है, और आपके बाल ऐसे नोचे गए थे कि ऐसे, कहती हैं आपकी लटें ऐसे निकल रही थी बालों की। काफिरों ने आपके बाल खींचे कि अबू बकर के बाल जड़ों समेत निकल रहे थे। ये थे अबू बकर, ये है अशरे मुबशर आने का रास्ता, ये है साबिकुन अलव्वलून। और अबू बकर सिद्दीक की क्या शान है कि जब अबू बकर सिद्दीक की बात होती है तो लोग आपको तकलीफ देने आ रहे हैं और अबू बकर उनको कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, लोग जवाब ही नहीं दे रहे। कह लीजिए कि अबू बकर की वो एक घड़ी 1,000 घड़ियों से बेहतर है कि जब लोग ईमान छुपा कर बैठे हुए थे और अबू बकर ने अपना ईमान जाहिर कर दिया। ये इन लोगों की खूबी है कि ये अपने दीन पर अमल और उसके इजहार पर शर्मिंदा नहीं थे। अबू बकर का एक बहुत बड़ा एहसान मुसलमानों और इस्लाम पे क्या है कि अबू बकर ने मुसलमान होते ही तबलीग शुरू कर दी। सबसे पहले अपने दोस्तों को दावत दी, बहुत मिलनसार थे, फ्रेंडली कह लीजिए, आज की ज़ुबान में कह लें लाइक्स बहुत है इनके, फॉलोअर्स बहुत है, और बड़े अच्छे साथी थे। इनकी तबलीग से नंबर एक उस्मान गनी, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन अब्दुल्ला या उबैदुल्ला, तलहा बिन उबैदुल्ला और साद बिन अबी वक्कास ईमान लाए। इसी तरह से हज़रत बिलाल, नहदिया उसकी बेटी और बनील मुसल की एक लौंडी थी और उम्मे उबैस ये गुलाम थे, लौंडियाँ थी, इन्होंने भी हज़रत अबू बकर की तबलीग से इस्लाम कबूल किया। और कुरैश ने जब उनको सताना शुरू किया तो एक एक को खरीद कर अबू बकर ने आज़ाद कर दिया। और वो शख्स जिसने अल्लाह के नबी को नमाज के दौरान गले में चादर डाल के घसीटा, उसका नाम उकबा बिन अबी मोईत था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक बीच में आ गए, अतक्तुलूना रजुलन नहीं यकूलु रब्बी अल्लाह, अपने ऊपर लीजिए, आज भी तो इस्लाम पे बातें होती हैं, हम सिर्फ खबरें सुनते हैं और बस ख़त्म, चुप, नो कमेंट्स, बात ना करो, रिकॉर्ड में आ जाएंगी बातें। याद रखिए, जो सिद्दीकियत के मुकाम पे पहुंच जाता है वो नबी या नबी के दीन पे हर फाता देकर खामोश नहीं रह सकता। और इस तरीके से अबू बकर ने जानी तौर पे भी इस्लाम का दिफा किया और माली तौर में भी। सच्चे दोस्त थे, गम ख्वार थे। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो के बारे में क्या कहें, अगर सिर्फ इनकी हिजरत की नेकियां ही इकट्ठी कर ली जाए ना तो उसको एक हदीस से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बैठे हैं और चांद सामने है, खुला आसमान है। अगर आप कभी किसी गांव में भी गए हो ना तो आप देखेंगे कि सहराओं की तरह खुला आसमान चमक रहा होता है, क्योंकि शहरों में तो रोशनियाँ बहुत होती हैं ना, तो सहराई इलाकों में आसमान बहुत काला होता है, तो चांद सितारे बहुत दिखते हैं। बड़ी अदा से हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, कोई दुनिया में ऐसा भी है कि जिसकी नेकियाँ आसमान के सितारों जैसी हों? या फिर रुक के एक जुमला लिखे, हज़रत आयशा ने ये क्यों कहा कि जिसकी नेकियाँ आसमान के तारों जैसी हों, ये क्यों नहीं कहा कि जिसकी जिसके डॉलर्स, जिसके फॉलोअर्स, जिसकी चीज़ें? याद रखिए, जब हम मादी दुनिया में रहते हैं तो हम इसको सक्सेस कहते हैं। कल रात हम जब वापस जा रहे थे स्कूल से, मगरिब के बाद ही का वक्त, रात ही हो गई भी थी, कहीं गाड़ी रुकी तो मेरे साथ जो थी कहने लगी, उस्ताज़ा ये जो आगे गाड़ी है ये आपको पता कितने की है? मैं सच बताऊं कि मुझे वो पुराने ज़माने की लगी, छोटी छोटी लाइटें थी, छोटी चुन्नी आंखें जिसको पंजाबी में कहते हैं, रियली कोई वो डैशी नहीं थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली लाइटें नहीं थी। मैंने समझा कि ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तो पुराने ज़माने की, मैंने कहा काफ़ी पुरानी होगी, तो कीमत क्या बताई थी? $4 लाख की गाड़ी है, और अपग्रेड करा ले अंदर से तो घर आने तक 6 की हो जाती है। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, उसमें कोई खूबी नहीं दिखी। मैं तो गम में मर गई कि 4 लाख की ये गाड़ी रोड पे, कोई मांगे तो सही अल्लाह के रास्ते में इस गाड़ी को। और अबू बकर ने क्या किया था, अभी सुनाती हूँ। सखावत इतनी कि वसयुजन्नबु हलतका अल्लज़ी युति मालहु यतज़क्का, ये इन्हीं की शान में नाजिल हुई कि इससे अलग वो रहेगा जो बहुत ही ज्यादा मुत्तकी है, और ये वो शख्स है कि जो माल इसलिए देता है कि पाक हो जाए, तज़किये के लिए। अबू बकर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, चंद जुमले लिख लें, ये क़यामत के दिन अबू बकर के काम आने हैं, हर मुश्किल में यही अबू बकर को निकालते थे परेशानियों से। हम कहते हैं अपने लिए कुछ रख लो, मुश्किल आई काम आएगा, वो कहते थे नहीं, अपने लिए अल्लाह को रख लो, मुश्किल आई तो वो काम आएगा। आपने फरमाया, मुझे अबू बकर के माल से जो नफ़ा पहुंचा है इससे ज़्यादा मुझे किसी के माल से नहीं पहुंचा। अबू बकर ये चीज़, ये बात सुनकर रोने लगे, कहने लगे, मैं और मेरा माल क्या चीज़ है, जो कुछ है सब आपका ही है। और एक रिवायत में कि अल्लाह के नबी, ये जुमला सुनिएगा, अल्लाह के नबी अबू बकर के माल में वैसा ही तसर्रुफ़ फरमाते हैं जैसा अपने माल में, तसर्रुफ़ समझ गए, यूज़, यानी अबू बकर की नेट की आपकी चेकबुक, आपका कार्ड अल्लाह के नबी के हाथ में रहता था, जाए यूज़ कर लें। वल्ला ही मैंने, आपने अल्लाह को ऐसे दिया अपना आप, या आप रखें अल्लाह जी, जाइए जहाँ मर्जी लगा लें। और जिस दिन अबू बकर सिद्दीक मुसलमान होते हैं ना, उस दिन उनके पास 40,000 दिरहम थे, 40,000। और दिरहम आपको पता है चांदी का सिक्का होता है, ये आज का दिरहम मत सोचिए जो दुबई और यूएई में चलता है, नहीं, चांदी का सिक्का। दीनार जो होता था ना, ये सोने का होता था, गोल्ड कॉइन्स, अशरफी, ये कौन सा था। और वो सब के सब आपने अल्लाह के नबी पर खर्च कर दिए। एक दिन अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या हुआ, उमर फारूक बैठे थे, जैशे उसरा कौन सा था, जैश उल उसरा किस लश्कर का नाम है, जंगे तबुक, जंगे तबुक। एक दिन उमर बैठे जंगे तबुक यानी जैशे उसरा के चंदे का तस्करा फरमाने लगे, कहने लगे, सुनिएगा, ये पढ़ के सुनाऊंगी आपको, कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें माल सदका करने का हुक्म दिया, तो मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो से बढ़कर माल सदका करने का पक्का इरादा कर लिया। ये तकाबुल नहीं है, शो ऑफ नहीं है, नहीं, नेकियों में बढ़ सकते हैं। वफी जालिक फल यतनाफसिल मुतनाफिसुन, अबू बकर और उमर की नेकियों में दौड़ रहती थी, एक दूसरे को लेट डाउन ना करना मुरादो तो ठीक है, अच्छी बात है, भाग दौड़ करे, दिखा के भी दे सकते हैं ताकि शायद हमारा दिखाना किसी को फायदा दे दे। खैर, अब उमर कहते हैं, और मैंने अपना निस्फ माल सदका कर दिया, रसूलुल्लाह ने मुझसे दरियाफ्त किया कि अपने अहलो याल के वास्ते कुछ छोड़ा हमने, मैंने अर्ज किया बाकी निस्फ यानी आधा छोड़ा। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी को जब कोई आके अल्लाह के लिए भी देता था तो आप पूछते थे कि पीछे कुछ है कि नहीं, ये तो नहीं कि सारा कुछ इस्लाम को दे दिया, मैंने कहा नहीं, आधा छोड़ आया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल लिए हुए आ गए, मैं सारा माल को चेंज करूं, आज की जुबान में हम में से कौन है जो अपनी पूरी बैंक की जो स्टेटमेंट है उसमें जो फिगर दिखता है सारा ही दे दे। अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा की तौफीक दे, सारा माल दे दिया। और आपने उनसे भी यही सवाल किया कि अपने अहलो याल के लिए क्या छोड़ा, कहा उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। इसके बाद उमर कहते हैं, मैंने ये सोच लिया आज के बाद अबू बकर से किसी बात में मैं भड़ ही नहीं सकूंगा, इतना अनअचीवेबल टारगेट सेट करके थे अबू बकर सिद्दीक ने क्यों का। रोते थे उमर, जब उमर रजी अल्लाह अन्हु को जब खिलाफत मिली थी, इंशाल्लाह एंड पे बादशाह रह ना जाए, तो अबू बकर सिद्दीक इन्हीं को नॉमिनेट करके गए थे ना, तो जो इनको बैतुल माल से मिलता था वजीफा, क्योंकि कपड़े का काम करते थे, जब नबूवत, जब आपको खिलाफत मिली एक दिन में सेटल डाउन हुई, शाम को पीठ पे कपड़े की गांठ डाल के चल पड़े। तो उमर ने कहा, ये आप किधर जा रहे हैं, कहा तो ये काम नहीं करूंगा तो बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, तो कहा जब आप अपने काम करेंगे तो ये उम्मत के काम कौन करेगा। फिर उस दिन फिर अबू बकर का वजीफा मुकर्रर हुआ, बैतुल माल से जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का फंड जो भी इज्तमाही माल था उसमें से अबू बकर को खर्चा मिलता था, और कितना सोच के कम करके खर्च करते थे कि जात पे फालतू ना लगे। जब दुनिया से जाने लगे जो बची खुची कौड़ियां थी, कहा जाओ इसको बैतुल माल में दाख जमा कर दो, तो उमर रो पड़े, कहा अबू बकर आप वो मेयार सेट करके खिलाफत का जा रहे हैं कि इसको कोई नहीं निभा सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं सबका एहसान दे चुका लेकिन अबू बकर का एहसान बाकी है, क्यामत के दिन अल्लाह अबू बकर को इसके बदले देगा। इतने फयाज थे, सखावत इनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। और फिर ऐसी ही सखावत का एक अमली नमूना हिजरत की रात होता है, सब सुन चुके हैं ये किस्से, सबको इजाज़त मिल गई हुई थी लेकिन अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं मिली थी। आप इंतज़ार कर रहे थे और जूँ ही इशारा हुआ आप सीधे अपने घर से निकले और अबू बकर के घर आए। रात का अंधेरा था, आपने कहा सबको पीछे कर दो, कहा अल्लाह के नबी आपके घर वालों के सिवा इधर कोई नहीं है, इशारा हज़रत आयशा की तरफ था। खैर, अबू बकर इजाज़त मिल गई है हिजरत की, इजाज़त मिल गई है, मैं आपके साथ जाऊंगा, हाँ तुम भी जाओगे। अबू बकर रोने लगे, हज़रत आयशा कहती हैं, अगर मैंने उस रात अपने बाप को खुशी से रोते ना देखा होता तो मैं कभी ना मानती कि कोई खुशी से भी रोता है। किस बात की खुशी थी, कहाँ जाएंगे, लंच पे के डिनर पे, हम तो आज लोगों की खिदमत के लिए या गरीबों या यतीमों और बेचारे कह लीजिए कि सैलाब जदगान के लिए भी चंदा जमा करते हैं, तो एक पौश किस्म का डिनर होता है फंड रेजिंग में, फिर जाके वहां देते हैं। हम तो उस वक्त भी उन यतीमों मिसकीनों का दर्द ना सहें जिस वक्त हम उनके लिए बड़े बड़े चेक्स लिख के दे रहे होते हैं। ये फर्क था। अबू बकर ने कहा, मैंने देखे बाहर घर के पीछे दो ऊँटनियाँ रखी हुई हैं, सारा दिन उनको खिलाते पिलाते हैं, मुझे पता था ये सफर आना है, मैंने अपनी ऊँटनियाँ तैयार रखी हुई हैं। आपने कहा मैं पैसे दूंगा? कहा नहीं अल्लाह के नबी, ये मैंने आपके लिए रखी। यानी जिनको जाना होता है वो तैयारियां करके रखते हैं। और अबू बकर की ऊँटनियों पर बिठा कर अबू बकर ही के गुलाम आमिर बिन फुखैरा को लीड करते कराते, और आपकी बेटी जो आपके घर में थी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, उनको बताया, अभी खबर भी नहीं देनी थी ना, निकलते हैं। और जाते जाते एक बैग है, थैला, खूब भारी भारी चीज़ें, कहा बेटा ये रख लो, दादा कुछ पूछेंगे तो उनको दे देना। वो दादा कौन थे? अबू कुहाफा। मुसलमान हो चुके थे लेकिन बूढ़े लोगों का दिल माल में ज़रा ज़्यादा ही होता है। इन्नल इंसान अली हुब्बिल खैरी लशदीद। जब चले गए तो बेटी से पूछते हैं, किधर है अबू बकर? कहा वो चला गया। चले गए किधर? चला गया कहीं अपने दोस्त के साथ तो नहीं निकल गया? हाँ वो चले गए। तो वो माल किधर है जो घर में पड़ा हुआ था? कहा पता नहीं दादा, वो रखा हुआ है कहीं, एक थैला दे गए आपके लिए। अबू कहाफा उस वक़्त नाबीना हो चुके थे, आंखें बंद करके सर टटोलते हैं, चलो शुक्र है सोने के डल्ले छोड़ गए। और अंधे नाबीना अबू कहाफा को नहीं पता था कि अबू बकर असल सोना ले गए हैं, ये पत्थर डाल के दे गए हैं बाप की तसल्ली के लिए। ये थे अबू बकर। इन लोगों को क्यों ना खुशखबरियाँ मिले। और जब गए, रास्ता बदल के जाना था ताकि कोई पीछा भी करे तो गलत तरफ चला जाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पे उठा लिया। आपसे छोटे थे 2 साल, सिर्फ 2 साल का फ़र्क था, और 2 ही साल जिए, आप ही की उम्र के मुताबिक बराबर हुए तो दुनिया से चले गए। पथरीले रास्ते पे अल्लाह के नबी को अपने कंधे पे बिठाए कि कहीं आपके पाँव भी जख्मी ना हो जाएं। और एक गार के पास पहुंच के कहा आप ज़रा इधर रुकिए, मैं ज़रा सफाई करूं। अंदर गए, का पुराना गार है, पता नहीं क्या सांप कीड़े होते हैं, उसको साफ़ किया पूरे को, अपने बदन के कपड़े फाड़ के उसकी छोटी छोटी धजियाँ बना के सुराखों में डाल दी, क्योंकि उनमें से कीड़ों के निकलने का डर होता है। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी को अंदर रखा। ज़रा सा सोचिए, और अल्लाह के नबी आप ही के तर पे, कह लीजिए कि वो जैसे थाइस होती है ना, सर रखा सो गए, सफ़र था, हिले नहीं अपनी जगह से, कि अल्लाह के नबी थके हुए थके, क्या वो नहीं थे थके हुए? और इतने में क्या हुआ कि एक सुराख जिसको बंद करना भूल गए थे उसमें से कोई मुजी कीड़ा निकला और उसने अबू बकर के अंगूठे पे डसना शुरू कर दिया। फिर भी नहीं हिल रहे, क्यों नहीं हिल रहे? सूरह हुजरात पढ़ी हुई थी। और जब आंसू नहीं बर्दाश्त हुए और वो आंसू अल्लाह के नबी के चेहरे पे गिरे तो आपकी आंख खुली। क्या हुआ? बस लगता है कुछ हो गया। बताया क्यों नहीं? नहीं आपका आराम ना ख़राब हो, आपने अपना लुआब लगाया तो वो ठीक हुआ। तो जो बात कर रही थी कि हज़रत आयशा ने जब चांद और सितारे देखे तो कहा अल्लाह के नबी, किसी की नेकियाँ इस सितारों से ज़्यादा हो सकती है इतनी? तो कहा हाँ। कहा किसकी? कहा उमर फारूक की। तो आयशा का दिल बुझ गया, कहने लगी मैं तो सोच रही थी आप मेरे बाप का नाम लेंगे। तब आपने ये बात फरमाई थी कि आयशा, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियाँ अबू बकर की 3 रातों की नेकियों के बराबर भी नहीं जो उन्होंने मेरे साथ घर में गुजारी। ये हैं असाबे को नल अव्वलों, ये हैं अशरे मुबशरा।